हरे कृष्ण। नर्तक की माता जी आशीर्वाद दीजिए। हरे कृष्ण, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। तो आज 4 फरवरी 2010 हमारे कैंप का ओपीडी का आज आखिरी दिन था। हरे कृष्णा। सब लोग आ गए हैं इसमें? एवरीबॉडी हैज कम? जो लोग कल यात्रा कर रहे हैं सब लोग आ रहे हैं? डॉक्टर चौधरी को बुलाइए जरा, जहां पर भी हो। तो कल हम सब लोग, जो लोग ओपीडी की सेवा कर चुके हैं, वो श्री गोवर्धन की यात्रा करने जाएंगे। श्री गिरिराज गोवर्धन की। भगवान को 108 वन बहुत प्यारे हैं, उसमें से 12 वन अधिक प्यारे हैं, और उससे अधिक प्रिय जो वृंदावन धाम है। और वृंदावन धाम में नंदगांव, बरसाना, काम्यवन और गोवर्धन और भी बहुत सारे बनाते हैं, और वृंदावन में उनको श्री गोवर्धन बहुत प्रिय है। तो श्री गोवर्धन की कथा आप सुनते आ रहे हैं, थोड़ा और विस्तार में उसको बताने का प्रयास करेंगे, और अंत में आपको कल के गोवर्धन परिक्रमा के बारे में कुछ सूचनाएं देंगे, जिससे आपकी परिक्रमा बहुत सुंदर होगी। और जैसे श्री गिरिराज की कथा आपने सुनी, उनका जन्म की, शालमली द्वीप में उनका जन्म हुआ द्रोणाचल के पिता के रूप में। तो उसमें आपने सुना कि जब पुलत्स्य मुनि उनको लेकर जा रहे थे, तो सब लोग सोचते, अरे तो भगवान ने जो गोवर्धन उठाया वो सब ऐसे ही दंत कथा है, माइथोलॉजी ऐसे बोलते हैं। हाँ, मैं आपको बताऊंगा कि गोवर्धन का क्या साइज था। हाँ, सबसे पहले महाराज ने आपको कथा बताई कि भगवान ने उन अपने हृदय से गोवर्धन को प्रकट किया, है ना। जब लीला स्थली उत्पन्न करने का विचार मन में आया, तो भगवान ने अपने हृदय से बीज रूप में उसको प्रकट किया, और फिर उसका इतना बढ़िया और इतना दीर्घ रूप में विस्तार हुआ कि उसकी चौड़ाई 100,000 योजन बनी। मतलब कितना होता है? 1 योजन 8 मील का होता है, तो मतलब 800,000 मील उसकी चौड़ाई, यहां तक वो विस्तार हो गया उसका। क्योंकि भगवान के हृदय से निर्माण होने के पश्चात वो इतना प्रफुल्लित हुआ, इतना आनंदित हुआ कि उसका विस्तार होते ही गया, और उसकी लंबाई जो है वो 100 करोड़ योजन हो गई। मतलब 800 करोड़ मील उसकी लंबाई। अगर आपको उसकी परिक्रमा करने बोलते तो पता नहीं कितने जन्म लग जाते आपको, है ना। आज तो अगर 22 मील की परिक्रमा है, 800 करोड़ योजन की लंबाई हो गई, मतलब जिसको घूमना है उसके आसपास। और ऊंचाई कितनी हुई? 50 करोड़ योजन, मतलब 400 मील, है ना, बराबर ना। यस, 400 मील उसकी आकाश में ऊंचाई थी। लेकिन ऐसे बताया, वर्णन किया गया है कि वो भगवान ने जब उसका विस्तार हुआ तो तुरंत जाके उनको सीमित कर दिया, इतना उनका विस्तार हुआ था। उसके पश्चात जब पुलत्स्य मुनि ने उनको उठाया, तो इसमें छोटी सी बात मैं बताना चाहता हूं। जब पुलत्स्य मुनि ने उसको लीलाया उठाया, एकदम कोई ऐसा बहुत परिश्रम करके, ऐसे एकदम जोर लगा के, प्राणायाम करके, ऐसा नहीं चल रहा था, आराम से चल रही थी, जैसे बच्चा गेंद लेके चलता है ना, एकदम आराम से चल रही थी। कहाँ से? शालमली द्वीप, जहाँ पर पर्वतों की माला है, वहाँ पर से वो आराम से उठा के चले, ऐसे कोई सा बालक कोई खिलौना लेके चलता है। और जब ब्रज आया तो गोवर्धन को पता था कि ये मेरी भगवान की लीला स्थली है, यहाँ पर मेरे ठाकुर जी आएंगे, तो वे एकदम भाव विभोर हो गए। अभी पुलत्स्य मुनि जो है वो योगी हैं, ऐसे कहते हैं कि योगी जो है वो जब परिपूर्ण अवस्था में पहुंचते हैं योग के, तो अपने आप को 9 शरीर में विभाजित कर सकते हैं। मतलब एक पुलत्स्य मुनि 9 पुलत्स्य मुनि बन सकते हैं। ये तो एक सिद्धि है, इसमें कोई भक्ति वक्ति का कोई काम नहीं है। रावण के अंदर भी सिद्धि थी, मालूम है ना आपको, देखा ना टीवी में आपने, राम बाण मारते सब लोग हा 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 हंसते रहते, क्योंकि वो 10 रूप में विभाजन हो जाता उसका, एक ओरिजिनल और 9 नकली, लेकिन सेम एकदम शक्ति शरीर सब सेम। और 10 रावण बाण लगा रहे हैं, बाण छोड़ रहे हैं। हाँ, तो ये एक योग सिद्धि है। तो ऐसे ही पुलत्स्य मुनि योगी थे। लेकिन योग का बल के सामने भक्ति का बल कितना प्रभावित होता है, इसका यह प्रमाण है हमारे लिए। गोवर्धन को योगी वगैरह नहीं थे, भगवान के प्रेमी भक्त थे। जैसे ही वो भाव विभोर हो गए भगवान के लिए, तो उनकी भाव विभोर था पुलत्स्य मुनि के योग बल के ऊपर हावी हो गई, प्रभावित हो गई। कैसे? अरे जो लोग भूख निद्रा और अपने निसर्ग के वेग जो है, हाँ, लघु शंका और बड़ी शंका के वेग जो है, उसको आसानी से रोक सकते हैं, वो योगी है ना। लेकिन वही योगी जो सभी वेगों पर नियंत्रण पा चुका है, एकदम नियंत्रित योगी है, उसके ऊपर गोवर्धन की भक्तिपूर्ण भाव विभोरता प्रभावित हो गई और लघु शंका को वो कंट्रोल नहीं कर पाए। और जब पता है ना, जब लघु शंका या कोई और वेग आता है तो मति थोड़ा सा उस समय के लिए भ्रष्ट हो जाती है। भूख लगती है तो अच्छा भला आदमी भी बुरा भला बोलने लगता है। हाँ, ऐसे जैसे वेग है, क्रोध के वेग है, मन के वेग है, शरीर के वेग है, निद्रा के वेग है, भूख के वेग है, ये थोड़ा सा बुद्धि को ना कवर कर देते पूरा। तो जैसे वेग आया तो ये सब नियंत्रण सब खत्म हो गया और तुरंत वो बिना सोचे रखे भाग गए। सोचे नहीं कि क्या उन्होंने कहा था कि हमको रखना नहीं, आपको किधर रखेंगे तो हम वहीं बैठ जाएंगे। और उसके आगे ऐसा वर्णन आता है कि अपनी भक्ति के बल से गिरिराज गोवर्धन ने उनको मजबूर किया लघु शंका के वेग में प्रभावित होने के लिए। सो डिवोशन डिफीटेड योगा, ये समझना बहुत जरूरी है। ये साबित होता है कि भक्ति जो है वो सर्वश्रेष्ठ मार्ग। भगवान भी भगवान अर्जुन को गीता में बताते हैं, योगी नाम अपि सर्वेशाम मद गति अंतरात्मना। जो योगी मुझसे जुड़ना चाहता है, सब योगी का मतलब क्या, युज धातु से वो शब्द बना है, भगवान से जुड़ना बोल कहते हैं उसको। उसका वर्ड टू वर्ड मीनिंग जुड़ना है, लेकिन उसका जो मतितार्थ है वो भगवान से जुड़ना है। तो सभी जो अलग प्रकार के योगी है वो भगवान से जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे अनंत योगियों में से मद गते अंतरात्मा, जो अंतरात्मा से मुझमें लीन है, वो सर्वश्रेष्ठ योगी है। भगवान ने स्वयं कहा है, और भक्त्याम माम अभिजानाति, अगर मुझे पहचानना है, जानना है, जैसे मैं हूं तत्वतः एज इट इज, जैसे मैं हूं, एज आई एम, जैसे मैं हूं, अगर मुझे जानना है तो केवल एक ही मार्ग है, भक्त्याम माम अभिजानाति। और मैं अगर आप मुझे कुछ अर्पण करोगे तो यो मे भक्त्या प्रयच्छति, भक्ति से अर्पण करेंगे तो ही लेंगे, हम आपसे स्वीकार करेंगे। इसका मतलब यह है कि हमें इस जीवन में किसी भी अन्य प्रकार के पद्धति से प्रभावित नहीं होना चाहिए। भक्ति एक सबसे सरल, सबसे आसान और सबसे सर्वश्रेष्ठ तरीका है, ये गोवर्धन की इस लीला से हम समझ सकते हैं। तो तभी गोवर्धन को जब रखा गया और गोवर्धन उठे नहीं, हाँ, जब गोवर्धन की इच्छा थी तो पुलत्स्य मुनि तुरंत उसको उठा पाए, जब गोवर्धन की इच्छा नहीं थी तो पुलत्स्य मुनि उनको नहीं उठा पाए। ये दूसरा प्रमाण है, योगी का बल जो है भक्त के बल से बहुत कम होता है, भक्त का बल योगी बल से कई गुना ज्यादा होता है। भगवान की दया से, भक्त के योग के बल से नहीं, हाँ, भक्त योगी योग करके बाकी योगियों को हराता नहीं है। ऐसे कई लीलाएं होती है, लेकिन उसमें सब में हमको समझना यह है कि भगवान की जो भक्ति है वही स्वयं सिद्ध है। तो अभी कितना साइज था उनका, तभी उनका साइज था 5 योजन चौड़ा, मतलब 40 माइल चौड़ा, 64 माइल लंबा परिक्रमा करने के लिए, और 16 माइल आकाश में। हाउ मच हाई ही वॉज ऑन दैट टाइम। तो ये जो पर्वत था वो पुलत्स्य मुनि ने आसानी से उठाया, और ये कब की बात है, ये सत्ययुग की बात है। इसके बाद त्रेता युग आया, उसके बाद द्वापर आया, हाँ, और द्वापर के अंत में, और पुलत्स्य मुनि ने उनको शाप दिया कि आप एक सरसों के दानों के आकार से जमीन में धंस जाओगे। तो ऐसा भी वर्णन आता है कि थोड़े दुविधा में आए गोवर्धन, क्या करें, ऋषि को अगर मना कर देंगे तो ऋषि शाप दे देंगे, और मना नहीं करेंगे तो चलना होगा, काशी जाना पड़ेगा। लेकिन भगवान की लीलाओं में सहायता करना, साथ देना, ये मेरे जीवन का उद्देश्य है। तो भगवान की सेवा के लिए ऋषि का शाप लेने को भी तैयार हो गए, फिर वो वहां पर धंस गए, विचार किया उन्होंने। तो हमको भी समझने की बात यह है कि अगर भगवान की सेवा में हमको कष्ट भी आए, कोई शाप भी भुगतना पड़े, कोई कष्ट और कोई पीड़ा, कोई वेदना सहन करना पड़े, जैसे गोवर्धन ने स्वयं आगे जाकर दिखाया ना, महाराज ने बताया ना कितना कष्ट था, मूसलधार वर्षा का आघात सुना, आघात सहन किया गोवर्धन ने, केवल भगवान के उनको भक्तों को सुख देने के लिए। स्वयं कष्ट में है, स्वयं पीड़ा में है, लेकिन उसी में खुशी और सुख मानते हैं। ठाकुर भक्ति विनोद जी भजन में कहते हैं कि तुम्हारा सेवा या उसका अर्थ यह है कि तुम्हारे सेवा में सेवा करते हुए जो भी दुख दर्द मुझे प्राप्त होता है वो मेरे जीवन का सबसे बड़ा आनंद है। द ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस इन माई लाइफ इज टू सफर पेन्स वाइल सर्विंग यू। तो भक्तों की ऐसी अभिलाषा होती है कि तुम्हारी सेवा के लिए कुछ भी कर सकते हैं, एनीथिंग एट एनी कॉस्ट, किसी कीमत पर आपकी सेवा हम करने को तैयार। तो पुलस्त्य मुनि का शाप आने वाला है, शाप मिलेगा, ये जानते हुए उन्होंने स्वीकार किया कि नहीं मैं भगवान की सेवा करूंगा, और शाप मिला उनको जमीन पर धंसने का। और वो तब से जब एक एक सरसों के दाने के आकार से जमीन में धंसते धंसते गए तो भगवान ने जो पर्वत उठाया था वो उससे कई जमीन पर धंसा हुआ पर्वत था। अगर पुलस्त्य मुनि जैसा योगी जो भगवान का ममय वांचो जीवलोके, हाँ, एक दस हजारवा जो केशाग्र है, बाल नहीं केश का अग्र जो है उसका दस हजारवा हिस्सा, अगर उतने साइज का पर्वत आराम से उठा सकता है तो ढसा हुआ पर्वत जो है वो भगवान को नहीं उठा सकते। वो तो ऐसे अनंत पर्वत जिस पृथ्वी पर है, ऐसे अनंत पृथ्वियों को वो अवकाश में तैराते रहते हैं, उनको उठाने की जरूरत नहीं है, वो तो अपने शक्ति से उनको तैरा रहे हैं, आराम से घूम रहे। कभी आकाश में ट्रैफिक जाम नहीं होता है, कभी कभी एक्सीडेंट नहीं होता है, हाँ, कि पृथ्वी का चंद्र से एक्सीडेंट हो गया, सब काम ठप हो गया, सूरज काम पे नहीं आया बिकॉज उनको इंजुरी हो गई एक्सीडेंट में, ऐसा कभी सुनते हैं क्या आप? कभी भी नहीं होता, कभी भी नहीं होता है। जैसे एक बोरी में सरसों के दाने भर देते हैं उतने अनंत ब्रह्मांड इस अवकाश में घूम रहे आराम से एकदम, कहीं भी कोई ट्रैफिक जैम, कोई गड़बड़, कोई एक्सीडेंट, कोई अपघात कुछ नहीं होता है। ऐसे भगवान को अगर एक किसी सरसों के दाने जैसा जो ब्रह्मांड है उसके अंदर जो 14 भुवन है, उसके अंदर जो पृथ्वी लोक है, उसके अंदर जो पृथ्वी ग्रह है, उसके ऊपर का अनंत पर्वतों का एक पर्वत अगर उठाना है तो क्या बड़ी बात है उसके अंदर। ये सब जो भगवान को जानते नहीं है उनके वचन है, सब जो भगवान की मान्यता समझते हैं उनके विस्तार के विस्तार के विस्तार के विस्तार जो महाविष्णु है उनके शरीर के रंध्रों में से, छिद्रों में से ब्रह्मांड निर्माण होते हैं। पर्वत नहीं, उस ब्रह्मांड के अंदर 14 भुवन होते हैं, उसके अंदर पर्वत होते हैं, ऐसे अनंत ब्रह्मांड उनके शरीर से निकलते हैं, हर एक रोम से, हर एक छिद्र से। तो ऐसे भगवान है वो स्वयं भी आके निर्माण नहीं करते हैं, वो अपने विस्तारों के विस्तारों के विस्तार से हाथ से निर्माण का कार्य करते हैं, उन्हीं से सबको सब, वो खुद केवल बंसरी बजाते हैं बस। इसलिए एक अमेरिकन व्यक्ति आया था रिसर्च करने के लिए कि भगवान कौन है, सब मंदिर में गया, वो जगह कोई व्यक्ति त्रिशूल लेके खड़ा है, कोई आठ हाथ में आठ शस्त्र लेके खड़ा है, कोई अंकुश है, कोई वज्र है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, लेकिन एक व्यक्ति कल बंसरी बजा रहा है, तो ये भगवान है, ये कुछ काम नहीं कर रहे हैं, बाकी सब काम कर रहे हैं, कुछ ना कुछ सेवा कर रहे हैं, कुछ ना कुछ उनको, हाँ शंकर जी के पास गए तो ध्यान में बैठे, मतलब किसी और का ध्यान कर रहे हैं ना, उनसे बड़े जो है उनका ध्यान करते होंगे। तो सबके अंदर कोई ना कोई सेवा है, या तो ध्यान है, या तो पूजा है, सब चल रहा है, लेकिन एक ही व्यक्ति केवल आनंद ले रहा है बस, वो भगवान हो सकता है। इमीजिएटली आई वॉज कन्विंस्ड कि श्री कृष्ण भगवान है। तो ऐसे भगवान को गिरिराज को उठाने में कोई कष्ट नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है। तो ये आकार है गिरिराज का। और आज का आकार क्या है, ये तो हम लोग 100 मतलब द्वापर के अंत में जो 125 साल की लीला है उसके अंदर 7 साल की उम्र में भगवान ने उसको उठाया था। आज हम कलयुग के 5000 और कुछ साल भी बीत चुके हैं। आज ऐसे कहते हैं कि मैक्सिमम हाइट जो गोवर्धन की वो 60 फीट है, मतलब हमारी बिल्डिंग की करीब करीब 6 मंजिल हो सकती है, ओनली दैट मच। और कितनी परिक्रमा है, 7 कोस, मतलब 22.5 हो सकता है, 22.5 किलोमीटर्स इतना ही चलना है। तो एक दूसरे से कलयुग जो है ना उसको थोड़ा सा, बहुत दोषों का सागर है वो, लेकिन बहुत अच्छा भी बना गया उसके अंदर, क्यों, सब चीज़ आसान कर दिया भगवान ने उसमें, क्योंकि तो इतना पतन हो चुका है सब लोगों का, स्मृति में, आयु में, अच्छे गुण में, स्मरण में, सब में इतनी घटन हो चुकी है कि आदमी कुछ कर ही नहीं सकता है। तो भगवान बोलेंगे, अरे मैं अगर ध्यान का बोलूं इनको, तप का बोलूं, यज्ञ का बोलूं, तो कुछ कर ही नहीं पाएंगे, ये सब जगह 100% फेल हो जाएंगे। तो चलो कोई बात नहीं, मैं अभी मेरे नाम में प्रकट होता हूं और केवल बोलता हूं कि आपके लिए मेरा नाम लो बस, खाली और कुछ मत करो, जहां है वहां रहो, तपस्या मत करो, कुछ भी मत करो, अपने घर में रहो, गृहस्थी में रहो, धन कमाओ, जो व्यवसाय करना है करो, मेरा नाम लो बस, मैं अपने सारे व्यक्तित्व को अपने नाम में अर्पण करता हूं और खाली मेरा नाम जपो, और वो ऐसा बना दिया है मैंने, भगवान कहते हैं कि आप बाल्य अवस्था में हो, बूढ़ी अवस्था में हो, तंदुरुस्त अवस्था में हो, रोगी अवस्था में हो, सुंदर अवस्था में हो, क्रूर अवस्था में हो, पढ़ी लिखी अवस्था में हो, अनपढ़ अवस्था में हो, गंवार हो, किसी भी गांव के हो, शहर के हो, देश के हो, काले रंग के हो, गोरे रंग के हो, ब्राह्मण हो, शूद्र हो, किसी भी अवस्था में आप सोच सकते हो, आप हो सकते हो, उसमें आप ले सकते हो, ऐसा उन्होंने बनाया। तो ऐसी तरह से बहुत भयंकर तपस्या करने की जरूरत नहीं है, आसानी से सब कुछ हो जाता है, इसलिए गृहस्थ की परिक्रमा भी आसान कर दिए। हाँ, ये सब मैं क्यों बता रहा हूं आपको, क्योंकि आपको कल चलना है 22 किलोमीटर। मतलब जो था पहले वो कंसेशन के रूप में आपने दिया गया, इसलिए आप समझना नहीं कि अरे 22 किलोमीटर चलना है, ऐसा मत सोचो, केवल 22 किलोमीटर चलना है ये सोच के चलना। हाँ, मन की तैयारी करना उसके लिए। और गिरिराज की क्या महिमा कहे, गिरिराज तो ऐसे कहते हैं कि गिरिराज की महिमा, श्री ब्रज की महिमा, शिव जी और अनंत शेष और ब्रह्मा जी और बलराम जी स्वयं नहीं कर पाते, और यहाँ के जिला तो यहाँ का महात्म्य तो श्री कृष्ण भी नहीं वर्णन कर सकते, ऐसे गिरिराज की महिमा है। गिरिराज को भगवान ने, भगवान के सबसे श्रेष्ठ भक्त जो हैं, हाँ कोई ऐरा गहरा नहीं, कोई ऐसा अनपढ़ गंवार आदमी बोलेगा ये बहुत महान व्यक्ति है, हाँ तो बोले क्या बोलने वाला कौन है, बोले देखेंगे उस पर उसकी परीक्षा करेंगे आप। लेकिन गिरिराज को हरिदास भरे कौन कह रहे हैं, रामानंद राय के संवाद में चैतन्य महाप्रभु उनको पूछते हैं आगे कहो और, आगे कहो और बताओ, और बताओ, तो पहले वो आम लोगों का वर्णन करते हैं, फिर योगियों का वर्णन करते हैं, फिर उसमें शांत रस का वर्णन करने शुरू करते हैं परिपूर्णता में, फिर दास का वर्णन करते हैं, फिर वात्सल्य का वर्णन करते हैं, फिर साख्य का वर्णन, फिर वात्सल्य का वर्णन, फिर माधुर्य का वर्णन करते हैं। तो उनको लगा भी हो गया खत्म, नहीं आगे कहो और बोलते, तो फिर किंकरियों का वर्णन करते हैं, सहचरियों का वर्णन करते हैं, हाँ फिर सखियों का वर्णन करते हैं, फिर प्रिय सखी का वर्णन करते हैं, फिर परम श्रेष्ठ सखी का वर्णन करते हैं, मतलब 8 सखी तक आ गए वो, और आगे कहते हैं और बोलो आगे, ललिता विशाखा उसमें श्रेष्ठ है, उसके आगे बताओ, फिर राधा रानी का वर्णन करते हैं, फिर आगे बताओ उनके बारे में, फिर उनके जो महाभाव बताया ना मैंने उस दिन कि वो जो प्रणय है उसमें रति है, उसमें मान है, उस सब प्रकार के अलग अलग भावों का वर्णन करते हैं, महाभाव का वर्णन करते हैं। तो ये गोपियां हैं, हाँ परम श्रेष्ठ सखियां हैं भगवान की, भगवान की माधुर्य रस में सेवा करते हैं। और स्वयं चैतन्य महाप्रभु जो स्त्री का पहना हुआ वस्त्र या कोई वस्तु या जूता भी देखना चाहते नहीं थे, इतना वो सख्त सन्यासी थे, वेरी स्ट्रिक्ट सन्यासी, जो स्त्री की मूर्ति का, लकड़ी की मूर्ति को भी देखते नहीं थे, इतने वो सबसे कठोर सन्यास का पालन उन्होंने किया है। वो सच चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि गोपी भरतुर पदकमलयोर दास दास अनुदास, ऐसे गोपियां जो भगवान की श्रेष्ठ भक्ता हैं उनके चरणों का मैं दास और दास दास बनना चाहता हूं, यह उनकी अभिलाषा है। वो गोपियां हैं जो स्वयं भगवान जब भक्त बनकर अवतार लेते हैं वो उनको पूजनीय मानते हैं, वंदनीय मानते हैं, क्योंकि उनका नाम लेते थे ना वो, जब करते थे बालक अवस्था में जब पंडित थे निमाई पंडित, तो वो गोपी गोपी ललिता विशाखा इंदुलेखा ऐसा जाम जपते थे। वो गोपियां कह रही हैं कि हे गोवर्धन आप हरिदास वर्य हो, ये उनका गौरव है। जो सबसे श्रेष्ठ भक्त है भगवान की वो उनको सब श्रेष्ठ में से श्रेष्ठ भक्त मानते हैं। हरिदास वर्य मतलब क्या, सभी हरिदास में से वो वर्य है, मतलब श्रेष्ठ है, श्रेष्ठतम है, ऐसा उनका वर्णन है। क्योंकि उनकी खासियत है बहुत, एक इसमें एक कथा आती है उनकी खासियत के बारे में बताने के लिए, कैसे वो निर्माण हुआ। जब त्रेतायुग आया तो भगवान रामचंद्र ने अवतार लिया है ना, रावण ने सीता को हरण करके लेके गए, फिर सेतुबंध बनने की बात हुई, और सेतु बन रहा था तो हनुमान जी कई जगह से बड़े बड़े पहाड़ की चोटियों को उठा उठा कर समुद्र में डाल रहे थे, भारतीय सागर में, हिंदी महासागर में, और कहाँ कहाँ से उठा उठा के बड़े बड़े पर्वत डाल रहे थे। आखिरी 7 कोस जगह बचती है, समय बहुत कम है ना, अभी ऐसे नहीं कि बनाते रहे उसको सालों साल, समय बहुत कम है। सीता देवी वहां पर पल पल रो रही है, तड़प रही है भगवान की याद में, तो जल्द से जल्द छुड़ाना है। तो सोचे कि एक ही ऐसा पर्वत उठाया जाए जिससे 7 कोस का जो है जगह घेर के तुरंत चाम चालू करे आगे का। तो ढूंढ रहे थे सब जगह पे, बहुत चोटियां थी पहाड़ की, लेकिन वो ढूंढे ढूंढे वृंदावन में जब आए तो अरे इतना सुंदर पहाड़ है, इतना लंबा चौड़ा है, तो उतर गए नीचे। और हनुमान जी तो बिल्कुल शक्तिशाली है बहुत, वो उनको समय नहीं अभी सोचने के लिए या कुछ करने के लिए, आगे सीधा पहाड़ को उठाने के लिए हाथ आगे किया तो पहाड़ नहीं उठ रहा है, तो उनको लगा अरे मुझसे नहीं उठ रहा है, मतलब कोई महान व्यक्ति है, तो जोर से उठाने का प्रयास किया, फिर भी नहीं हिले। फिर उन्होंने सोचा कि चलो उनका विस्तार देखेंगे कहाँ से कहाँ तक, उतनी शक्ति लगाएंगे, फिर वो एक दिशा में जाने लगे कि भाई इसका एंड कहाँ है देखें। लेकिन जैसे वो यहाँ से आगे बढ़ने लगे, गिरिराज जी भी आगे बढ़ने लगे, वो आगे जा रहे हैं, गिरिराज जी आगे आगे बढ़ रहे हैं, आगे आगे जा रहे हैं, आगे आगे बढ़ रहे हैं, उसकी थाह नहीं पा सके वो। फिर दूसरी दिशा में आए, दूसरी दिशा में आए, वहां से उड़ रहे हैं तेजी से, जितनी गति से उड़ रहे हैं उतने से आगे गिरिराज जी बढ़ रहे हैं। तब उनको समझ में आया कि ये कोई दिव्य व्यक्ति है। तो हनुमान जी ने उनको दंडवत प्रणाम किया, उसकी माफी मांगी, अपना परिचय पूछा। तब गिरिराज ने कहा कि मैं गिरिराज हूं, भगवान का किंकर भक्त हूं। तो क्यों आप मुझे उठाना चाहते हैं? तो फिर संक्षेप में उन्होंने वर्णन किया कि क्यों उठा रहे हैं उनको। कि अच्छा, मेरे प्रभु रामचंद्र उनकी सेवा में, तुरंत उठाओ मुझे, एकदम उठने लायक हो गए। तुरंत हनुमान जी ने उनको उठाया। फिर वही बात है ना, भक्ति का प्रभाव कैसे होता है। हनुमान जी ने उठा पाया उनको, लेकिन जब उनकी इच्छा हुई आराम से उठा पाया, एकदम आराम से उठा के आकाश में उड़े, जिसका मतलब हनुमान जी ने भी उनको उठाया है। उलट समझ ने उठाया, हनुमान जी ने भी उनको उठाया है। आकाश में जैसे उड़े और जाने लगे श्रीलंका की ओर, मतलब समुद्र की ओर, तो देववाणी हुई कि अभी सेतुबंध का काम जो है पूरा हो चुका है, अभी कोई पर्वत की जरूरत नहीं है। तो तब हनुमान जी नीचे आए और जगह पर रख दिया उनको। बहुत रोए गोवर्धन जी, बहुत रोए, बहुत रोए कि अभी इतने सत्ययुग बीत गया, त्रेतायुग भी अभी आया, इतना साल, लाखों साल मैंने वेट किया और अभी भगवान के दर्शन होने वाले थे वो भी चूक गए। तो इतने विरह में व्याकुल हो गए वो। हनुमान जी दंग रह गए, क्या विरह है इनका, क्या क्या प्रेम है भगवान से। हाँ, इस सेवा नहीं प्राप्त हुई तो कितना दर्द हो रहा है उनको, कितनी पीड़ा हो रही है, कितनी यातना हो रही है। बड़े प्रभावित हो गए वो, थोड़ा बहुत समझाने की कोशिश किया लेकिन वो संभाल नहीं पाए, उनको सांत्वना नहीं कर पाए। गए प्रभु रामचंद्र को, बड़े चाव से उन्होंने, उत्साह से इस भक्त के बारे में बताया कि ऐसा मैं एक भक्त से मिला आपके, क्या विरह था उसका आपके प्रति, जब से ही देववाणी हुई तो रोने लगे वो। तो भगवान तो जानते हैं वो कौन है, वो मेरे गोवर्धन भक्त हैं, जाओ उनको मेरा संदेश दे दो। तो प्रभु रामचंद्र संदेश दिया उनको, हनुमान जी आके संदेश दिया। क्या संदेश दिया? कि अगले अवतार में जब मैं आऊँगा, स्वयं मेरे पूर्ण रूप में आऊँगा द्वापर के अंत में, तब तुम्हारे ही आसपास मैं मेरी सारी अंतरंग लीला करूँगा, आपको चुनूंगा मेरे अंतरंग लीला करने के लिए। इसलिए जो पांचों रस हैं, शांत रस है, दास्य रस है, साख्य लीला है, वात्सल्य रस है, माधुरी रस है, ये सभी रसों का लीला गोवर्धन पे हुआ है, ये गोवर्धन की विशेषता है। ऐसे ही एक व्यक्ति है बलराम जी, वो भी भगवान की पांचों रस में सेवा करते हैं, लेकिन वो स्वयं करते हैं। यहाँ पर गिरिराज गोवर्धन जो है वो सेवा ऐसी करते हैं कि वो लीलाओं को संपन्न करने के लिए सहायता करते हैं। ये बिकम्स अ बेस, हाँ, वो उसका मूलभूत पाया बन जाते हैं जिसमें वो सारी लीला कर सकते हैं। तो क्या क्या लीला होती है उसके अंदर, उनके अंदर। और एक बात इसमें समझने की जरूरत ऐसी है कि गिरिराज गोवर्धन जो है उनका दो स्वरूप है। एक तो स्वयं विष्णु भी हैं, जैसे ब्रह्मा जी यहाँ ब्रह्माचल है, शिव जी नंदेश्वर बने हुए नंदगांव में, वैसे स्वयं विष्णु गोवर्धन बने हुए हैं। एक ही साथ वो भगवान भी है, एक साथ भगवान के सेवक भी हैं। जैसे बलराम जी भी ऐसे ही हैं, वो स्वयं भगवान भी हैं और भगवान के सेवक भी हैं, एक साथ में वो दो चीज़, ये अचिंत्य भेदाभेद तत्व है। वैसे गोवर्धन भी स्वयं भगवान के सेवक रूप में है और भगवान के स्वयं भगवान भी हैं, और वो मोर के रूप में है। उनका शरीर का जो आकार है वो मोर का है, और वे ऐसे भाव विभोर होकर जो उल्टा गिरा हुआ है, ऐसे मोर का उसका आकार है। अभी आप मोर कैसे देखते हो, यहाँ पर ऐसे देखते हो ना, उसकी आंखें जमीन की ओर झुकी हुई दिखती है आपको, या तो शरीर के जो पैर जो है वो जमीन की ओर है, ये उल्टे हैं, इनकी आंखें आकाश की ओर है। और बीच में जब गर्दन ऐसे ऐसे होती है ना, ऐसी गर्दन, तो वो उतना हिस्सा जमीन के अंदर है, उस हिस्से को घाटी कहते हैं। घाटी मतलब आप इस पार से उस पार जा सकते हैं गोवर्धन से। सखियाँ इस घाटियों से यहाँ से वहाँ जाती थी, ऐसे कई घाटियाँ हैं वृंदावन में। एक घाटी कुसुम सरोवर के पास में भी है, एक घाटी दान घाटी के पास में है, आगे भी बहुत घाटियाँ हैं जहाँ से गोपियाँ बरसाने नंदगांव से मथुरा की ओर जाती थी, तब ये घाटी से गुजर के जाती थी। आज हमारे लिए देखने के लिए सबसे प्रमुख घाटी जो है वो दान घाटी है, जहाँ से हमारी बस जाती है, उसके दोनों तरफ गोवर्धन है। और बाकी जो जो दान घाटी गोवर्धन की गर्दन में मानी गई है, कंठ माना गया है, जो जमीन के नीचे है। और दो आंखें उसकी राधा और श्याम कुंड है, राधा कुंड और श्याम कुंड, गर्दन उनकी दान घाटी है, उनका शरीर जो है वो आगे आने और में बढ़ते जाता है, और पुंछरी जो है लास्ट में उत्तर दिशा में पुंछरी आती है, दक्षिण दिशा में राधा कुंड और श्याम कुंड है। और इनके पांच प्रकार के शरीर के भाग हैं, जो ऐसे कोई विशेष इस एरिया में ऐसा नहीं है, लेकिन पांच प्रकार के उनके खूबियां हैं, जिसमें जब वो प्रकट करते हैं तो उसमें वो उस प्रकार की लीला भगवान की होती है। जैसे उनका पार्श्व भाग जो है उसमें उसको कंदुक तीर्थ कहा गया है, मतलब वो जो जो हंसी मजाक की लीला है भगवान की, उसमें गोपाल और श्री कृष्ण भगवान वहाँ उस एरिया में उस प्रकार का भाव प्रकट करते हैं। उनका कटी प्रदेश जो है, मतलब ये जो हमारा जो क्या कहते हैं उसको, कमर कहते हैं उसको, कटी प्रदेश, उसको उष्णिष तीर्थ कहा गया है, और उसमें क्या करते हैं भगवान, राधा और माधव अपनी माधुर्य लीलाओं को प्रकट करते हैं। तो माधुर्य लीला में कई प्रकार हैं, रासलीला उसका परिसीमा है, लेकिन जो प्रणय लीला होती है उसको माधुर्य लीला कहते हैं। सखा और सखियाँ जो हैं प्रेम में जो लीला करते हैं, तो वो उष्णिष तीर्थ कहा गया उसको। और तीसरा उनका देश, मतलब पृष्ठ देश, तीसरा उनका कैटेगरी है, उसमें जो गोपियां हैं वो कदम पलाश जैसे वृक्ष जो हैं उनके पत्ते निकालकर उसमें प्रेम से गोपियों गोपालों को और कृष्ण को अपने हाथ से माखन और दही खिलाते हैं, बड़े प्रेम से भर भर के खिलाते हैं, वो उनका पृष्ठ देश। उनका जो उदर भाग है, मतलब पेट का जो हिस्सा है, उसको लौकिक तीर्थ कहते हैं, और उसकी क्या विशेषता है, उसमें जो सखा लोग हैं वो बहुत ज़्यादा हंसी मजाक, जो चिना झपटी, हाँ लुका छुपी ऐसे खेलते ना, मतलब बहुत ज़्यादा उद्दंडता दिखाते हैं उसके अंदर। किसी का, महाराज ने बताया ना, वो किसी का डब्बा छीनना, यहाँ से वहाँ फेंकना, किसी का कुछ चोरी करना यहाँ से वहाँ फेंक देना, उसको लुका छुपी खेलना, गुल्ली डंडा खेलना, पानी में कूदना, कभी बंदर बनना, कभी मंडक बनना, उनके पीछे भागना, कभी मोर के पीछे भागना, कभी इसके पीछे भागना, इस प्रकार के जो चटपटी लीलाएं हैं वो इस लौकिक तीर्थ में होती है। ऐसे कहते हैं कि लौकिक तीर्थ में साख्य भाव का साम्राज्य है, इट इज कंट्रोल्ड एंड इन्फ्लुएंस्ड बाय सखा लीला। और उसका आगे का जो सबसे तीव्र और सबसे उत्कट विभाग है उनका, वो है श्रृंगार तीर्थ। श्रृंगार तीर्थ का मतलब क्या है, वहां पर रासलीला होती है, और रासलीला जो है वो जीव के प्रति भगवान ने प्रकट की हुई सर्वोच्च प्रेम की भावना जो है वो रासलीला है। भगवान जीव पर क्या कितना प्रेम कर सकते हैं, उसका जो परमोच्च सीमा है और परमोच्च संबंध है भगवान और अपने भक्त के बीच में, प्रेम का संबंध जो है, द मैक्सिमम मैनिफेस्टेशन ऑफ लव, वो है श्रृंगार, जो रासलीला के अंदर प्रकट होता है। और ऐसे अनंत रासलीला स्थली जो है वो गोवर्धन में समाई हुई है। जब रासलीला होती है तो उस विभाग को श्रृंगार तीर्थ कहते हैं, ऐसे गोवर्धन की विशेषता है। और गोवर्धन की क्या विशेषता है, गोवर्धन के अंदर क्या नहीं है भगवान की सेवा के लिए। गोवर्धन तो बहुत सख्त नजर आता है, पत्थर है उसके, आप कल देखेंगे दो प्रकार के पत्थर हैं, एक थोड़े हल्के गोरे और एक डार्क सांवले रंग के, वो या तो कृष्ण बलराम के स्वरूप मान सकते हैं आप, या राधा कृष्ण का स्वरूप भी मान सकते हैं। हर जगह पर आप गौर से देखेंगे तो आप कैसे अलग अलग रंग के, हल्के रंग के और गर्द रंग के पत्थर दिखाई पड़ेंगे, शिलाएं दिखाई पड़ेंगी। और भी गौर से आप देखेंगे, हमको पता नहीं था पहले, कुछ ब्रजवासियों ने हमको उसे दिखा के वहां देखो भगवान की कई लीलाएं उसके अंदर चित्रित की गई है, नेचुरली, यार किसने बनाया नहीं उसको। गौर से आप देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि अनेक भगवान की लीलाएं उसमें प्रकट है। उसमें बीच में एक जगह है जहाँ पर गया प्रसाद जी की समाधि है, एक बड़े संत हुए हैं यहाँ पर, उनकी समाधि के आसपास एक ऐसी जगह बनाई गई है जिनका समाधि है, उसके अंदर एक ऐसा कांच का महल बनाया है, उसके अंदर ऐसी शिलाओं को इकट्ठा करके रखा है जिसमें भगवान की, रामायण की, महाभारत की सब लीलाओं का दर्शन है, स्वयं सूरत है उसके अंदर। तो ये जो पत्थर है वो साधारण पत्थर नहीं है, असाधारण पत्थर है। चैतन्य महाप्रभु ने भी कहा है कि आप ब्रह्माचल पर चढ़ सकते हो, नंदीश्वर पर चढ़ सकते हो नंदगांव में, लेकिन गिरिराज पर नहीं चढ़ सकते ना। चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान जब भक्त बनकर आए तो वो भी उस पर चढ़े नहीं, दूर से वंदन किया उन्होंने। ऐसी वंदनीय शिलाएं हैं सभी। और विशेषता क्या है उनकी, कि जब भगवान उस पर चलते हैं, चलते थे अपने बाल बाल सखाओं को लेकर, तभी ये सख्त पर पहाड़ के जैसे, जो पर्वत जैसे शिलाएं हैं, एकदम मक्खन जैसे मुलायम बन जाती थी, पैर रखते ही मुलायम, बाकी जगह सख्त। फिर आगे जहां जहां उनके पैर पड़ेंगे, राधा कृष्ण गोपियां सखियां गोपाल कृष्ण भगवान, जहां पर भी कृष्ण बलराम के चरण पड़ेंगे तुरंत मुलायम बन जाते थे। दो कारण है उसके मुलायम बनने के, एक है सेवा के रूप में और दूसरे भाव के रूप में। जैसे ही भगवान का स्मरण होते ये भाव विवर हुआ करते थे और अपने आप मुलायम बन जाते थे। यहां पर भी यही भाव है, जब ब्रह्मा जी पर कृष्ण भगवान और राधा रानी चलते थे तो ये भी ब्रह्मा जी ऐसे भाव विवर होकर ऐसे मुलायम बन जाते थे लहरों की तरह। इसलिए वहां पर माखन गिरा तो उसका निशान बन गया, भगवान का पेटा छूट गया तो उसका भी निशान बना हुआ है। जब सखिया उनको खींचते चली गई, पेटा छूटता चला गया, पेटा जो उनका है फिर लाइन बन गया, वो खींचते लेके जा रहे हैं सब सखियाँ भगवान को, तो उसका भी लाइन गिरा वहां पर। जब मटकी फोड़ी भगवान ने, मक्खी जहाँ गिरी वहां पर भी निशान बना हुआ है। क्यों बना हुआ है? पत्थर पर निशान नहीं बनता, आज आप उसमें फेंको कुछ नहीं होता है। लेकिन उस समय पर पत्थर पिघला करते थे भाव में होकर। और गोवर्धन की क्या विशेषता है? गोवर्धन धनकर जलाशय है, सुंदर ठंडे जल के जलाशय है, उसमें से जल का जो बाष्प उत्पन्न होता है वो हवा में ऐसे जाता है और जितने फूल खिले हुए हैं अलग अलग प्रकार के, अलग अलग अनंत प्रकार के खुशबूदार फूल वहां पर खिले हुए हैं। उसके जो पू केसर है, मतलब जो खुशबू लेके जाते हैं ना वो पू केसर होते हैं ना, जो खुशबू निकलती है फूलों से, ये बाष्प और जो खुशबू मिक्स हो जाती है और ये सब जगह फैलते हैं और भगवान उनके सखा और सखियों के त्वचा में जाकर उनको आनंद देते हैं। समझ में आ रहा है आपको? हाँ, ये भगवान के धाम का थोड़ा सा वर्णन है। ऐसे भगवान के धाम में अनेक ऐसे सर्वश्रेष्ठ और सूक्ष्म आनंद है। तो गोवर्धन अपने जलाशय द्वारा ऐसे सुंदर वातावरण बाष्पमय ठंडक वाला निर्माण करता है। उसमें झरने भी है, आप कूद सकते हैं, गोपाल उनके अंदर नाच सकते हैं, कूद सकते हैं, स्नान कर सकते हैं, जो चाहे कर सकते हैं। हाँ, फिर उसके अंदर बैठने की जगह है जहाँ पर राधा कृष्ण बैठ सकते हैं, सखा बैठ सकते हैं। फिर उसके अंदर गुफाएं हैं जहाँ पर राधा कृष्ण गोपियाँ, उनको अगर अंतरंग लीला करनी है, प्राइवेट में जाके बैठना है तो गुफा में जाके बैठ सकते हैं। उसके अंदर ऐसे ऐसे वृक्ष हैं, हर प्रकार के फल हर प्रकार के फूल उन वृक्षों में आते हैं, ऐसे प्रकार के वृक्ष गोवर्धन में उपलब्ध हैं। गोवर्धन में सब प्रकार के औषधि जड़ी बूटियाँ उपलब्ध हैं। आज आपके आंखों के लिए वो शायद प्रकट नहीं है लेकिन गोवर्धन सभी जड़ी बूटियों से युक्त है। साथ साथ उसमें रत्न जितने भी हैं, हीरे जवाहरात जितने हैं, वो सब गोवर्धन से उत्पन्न होते हैं। जब चाहे भगवान उनको लेकर अलंकार बनाकर गोपियों को पहना सकते हैं, गोपियां भगवान को पहना सकती हैं। और सबसे बड़ा उनका काम जो सेवा है गोवर्धन। गो की डिक्शनरी में, शब्दकोश में कई व्याख्याएं की गई हैं, कई व्याख्याएं हैं। उसमें तीन प्रमुख व्याख्या हैं, एक है गो मतलब इंद्रियां, एक है गो मतलब गाय और एक है गो मतलब भूमि। ऐसे कई नौ प्रकार के नाम हैं, सब मुझे याद नहीं आ रहे लेकिन तीन प्रमुख हैं। और गो संवर्धन, गोवर्धन मतलब इंद्रियां, भूमि और गाय, तीनों का आनंद देने वाला, तीनों को आनंद का संवर्धन वृद्धि करने वाला यह गोवर्धन है। खास करके ब्रजवासियों के लिए जो वैश्य समाज के थे, नंद महाराज जैसे ग्वाल बाल, उनके गायों के लिए बहुत ही सुगंधित, बहुत ही पौष्टिक और बहुत ही मुलायम घास जो है वो ये गोवर्धन से उगता था। और अधिकांश गाय जो हैं गौचारण के लिए गोवर्धन लेके जाते थे उनको, और भगवान भी उनको चराते चराते वहाँ पर गोवर्धन में बैठकर कभी छाक लीला करते। छाक लीला का मतलब क्या है? एक साथ बैठना, अपने अपने डब्बे खोलना और बांटना और खाना, उसको छाक लीला कहते हैं। कभी कभी छाक घर से लेके आते हैं, कभी कभी सखियों को नंदरानी यानी कि यशोदा मैया भेजती हैं, उनको ढूंढ ढूंढते ये सखियाँ आती हैं और जहाँ पर लीला कर रहे हैं वहाँ पर जाके उनको डब्बा देते हैं, वहाँ पर बैठ के आनंद देते हैं। कमल जैसे फूल में व्यवस्था में बैठते हैं कृष्ण भगवान को केंद्र स्थान में रखकर। तो भगवान की जैसा भाव है वैसे वैसे अनुकूल योजना गोवर्धन बनाता है। तो ये केवल गो संवर्धन मतलब गायों को बढ़ाने के लिए नहीं है, भगवान की हर लीला के भाव को संवर्धन करने के लिए अनुकूल योजनाएं गोवर्धन के पास में। हर प्रकार से गोवर्धन जो है संपन्न है अपनी इच्छा से, मतलब वो चाहते हैं कि भगवान की लीला में कोई कमी ना हो, इसलिए गोवर्धन उनको सब साधन जोड़ देता है। सखियों की सहायता भी मिलती है, जैसे कि इन वृंदा देवी जो है वो सब योजना बनाती हैं कि क्या क्या जिला कहाँ कहाँ की जाए, सब प्रकार का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो गोवर्धन जी प्रोवाइड करते हैं। हाँ, ये गोवर्धन की मानता है। इस प्रकार से गोपियां जब हरिदास वर्य के रूप में उनका गौरव करते हैं तो और भी आगे वर्णन करते हैं कि ये कितने कितने महान और कितने भाग्यवान जीव हैं ये। श्री कृष्ण और बलराम के चरण इन पर हमेशा गिरते हैं, उनको कितना आनंद देते हैं अपने मुलायम होने से, अपने खुशबूदार होने से, अपने वातावरण से, अपने फलों से, फूलों से, रत्नों से, गुफाओं से, कंदरों से, झरनों से और जलाशयों से, हर प्रकार से ये कितना आनंद भगवान को देते हैं। कितना महान भक्त है ये और उनका गौरव करते हैं। इस श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद में इनका वर्णन आता है। तो इसलिए हमें समझना जरूरी है कि हम जो परिक्रमा कल करने जा रहे हैं वो साधारण वस्तु नहीं है। वाराह पुराण, पद्म पुराण, स्कंद पुराण, बृहद गौतमीय तंत्र, बृहद नारदीय पुराण, ये सभी अलग अलग गर्ग संहिता, ब्रह्म विवर्त पुराण, ये अलग अलग पुराणों और संहिता में और शास्त्रों में वर्णन आता है कि गोवर्धन परिक्रमा जो व्यक्ति करता है उसे पुनः जन्म मृत्यु का मुख नहीं देखना पड़ता है। बोलो से गिरिराज की। तो गिरिराज परिक्रमा का अर्थ यह है कि जो इनकी परिक्रमा करता है, पूरी कर लेता है, उसको बार बार पुनः कभी भी जन्म मृत्यु का मुख नहीं देखना पड़ता है। अब पुनर्भव दर्शनम, पुनः उनको इस पृथ्वी पर या इस भौतिक जगत में आकर शरीर धारण करके जन्म मृत्यु का दुख नहीं भोगना पड़ता है और न केवल मुक्ति प्राप्त होती है लेकिन भगवान का धाम प्राप्त होता है। ये समझना बहुत जरूरी है। भक्त को मुक्ति में इच्छा नहीं होती है। हाँ, भुक्ति मुक्ति क्या सिद्धि, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकल अशांत, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव विशांत। भक्त शांति क्यों रहता है भक्त के जीवन में? क्योंकि ना सिद्धि की इच्छा करता ही, वो सिद्धि कामी भी नहीं है, ना भुक्ति कामी है, उनको भोग की इच्छा भी नहीं है और मुक्ति कामी भी नहीं है, वो मुक्ति को भी तुच्छ मानता है। ऐसा कहते हैं जो भक्त व्यक्ति है उसके पीछे हाथ जोड़कर छह प्रकार की मुक्तियां भागते रहती हैं उनके पीछे पीछे, वो उनके ओर मुड़के भी देखता नहीं है, इज नॉट इंटरेस्टेड इन मुक्ति। तो हम लोग परिक्रमा, ये तो एक मैंने बता दिया आपको क्योंकि शास्त्र में लिखा है, बताना जरूरी है आपको, लेकिन हम लोग जन्म मृत्यु की मुक्ति के लिए गोवर्धन की प्रदक्षिणा नहीं कर रहे हैं। हम भगवान के चरणों की भक्ति प्राप्त करने के लिए गोवर्धन की परिक्रमा करने जा रहे हैं। ये भाव सबके मन हृदय से फिक्स होना चाहिए, एकदम अधिष्ठान होना चाहिए इस भाव का हमारे हृदय में कि हम जो भी कार्य करते हैं, जैसे कि यहाँ बरसाना आई कैंप में सेवा कर रहे हैं, हाँ संत लोग कहते हैं कि कोई भी काम करेंगे उसके अंदर कोई स्वार्थ नहीं होना चाहिए, स्वयं के लिए कुछ लाभ की इच्छा नहीं होनी चाहिए, किसी भी लाभ हेतु कोई कार्य नहीं करना चाहिए, तो वो सेवा के कैटेगरी में उसकी गिनती नहीं हो सकती है। जो निरपेक्ष होता है, निस्वार्थ होता है, लोगों के कल्याण के लिए होता है, भगवान के आनंद के लिए होता है और जिसमें कोई अहम नहीं होता है, कोई द्वेष नहीं होता है किसी प्रकार का, कोई गलत भावना नहीं होती है उसके अंदर, वही कार्य को हम सेवा के कैटेगरी में वर्गीकृत कर सकते हैं। और हम गोवर्धन परिक्रमा में ये समझ कर नहीं करेंगे कि मेरे मुझे लाभ मिलेगा, मैं पाप से मुक्त हो जाऊंगा, मैं जन्म मृत्यु चक्र से मुक्त हो जाऊंगा, ये नहीं। हम भक्त को प्रसन्न करने के लिए गिरिराज की परिक्रमा जो है वो पाद सेवनम है। हाँ, प्रदक्षिणा करना किसी भी तुलसी जी का या भगवान के मंदिर का या गिरिराज जी गोवर्धन, मतलब उनके चरणों की सेवा ही है। आप साक्षात उनके चरणों को दुलार रहे हैं, प्रेम दे रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, उनको आनंद दे रहे हैं, यही मतलब है परिक्रमा का। तो जब भी आप चलेंगे तो आपको शुरुआत से लेकर अंत में ध्यान रखना है कि हम गिरिराज की चरण सेवा कर रहे हैं। आप थकेंगे, बीच में धूप आएगी, कष्ट होगा, लगेगा कब खत्म होगा, प्रभु जी कितना बाकी है अभी, ऐसे मन में आपके विचार आएंगे, लेकिन भूलना नहीं आपको कि हम भगवान के चरणों की सेवा करने के लिए ये कर रहे हैं। हमको ध्यान भी होना चाहिए कि सबसे पहली परिक्रमा किसने की थी गोवर्धन की, बताइए। सबसे पहले इसका गोवर्धन परिक्रमा का आरंभ किसने किया था? श्री कृष्ण भगवान ने स्वयं, जब उन्होंने गोवर्धन की पूजा कराई अपने पिताजी से कहकर, हाँ कि इंद्र की पूजा मत करो, कोई जरूरत नहीं है, उनको पानी देना ही है आपको, पूजा नहीं करेंगे तो भी उनकी नौकरी है भगवान की, उनको करना ही करना है। आप ये समझ लें कि आप उनको यज्ञ करेंगे, प्रसन्न करेंगे तो थोड़ा ज़्यादा जल देंगे आपको, हाँ ब्याज के साथ देंगे, ऐसा नहीं है। तो फिर उनके मीठी मीठी मधुर वाणी के संभाषण के सम्मोहन से वो मान गए हाँ, और उसी साहित्र के सामने समुग्र को लेकर उन्होंने क्या किया, गोवर्धन की पूजा की। फिर गोवर्धन को भोग लगाया, सब गांव का जितना भी अन्न था वृंदावन धाम का सब लगाया गया। कल क्या खाएंगे उस सोचा नहीं उन्होंने, कितनी त्याग की भावना है, कल ब्रेकफास्ट में क्या खाएंगे सोचा नहीं उन्होंने। हम लोग व्यवस्था करते हैं उसकी, 10 दिन को आए, 10 दिन का सामान लेके आते हैं सब। लेकिन ब्रजवासियों ने कुछ सोचा नहीं उसके बारे में कि कल क्या खाएंगे, जितना भी सामान था सब लगा दिया भगवान की इच्छा के अनुसार। और सारा गोवर्धन, भगवान स्वयं प्रकट हो गए गोवर्धन के रूप में और सब खा लिया उन्होंने। और उसके बाद भगवान ने सारे ब्रजवासियों को लेकर गिरिराज की परिक्रमा की। हाँ, तो जो कार्य स्वयं भगवान करते हैं हमको तो उसको करना ही चाहिए। हाँ, अनुकरण के रूप में नहीं, एक क्या कहते हैं उसको, फॉलोइंग इन फुटस्टेप्स, उनके पदचिन्हों पर चलने के लिए हमको करना चाहिए। और भगवान ने ही इस कार्य का शुभारंभ किया है अपनी लीला के अंतर्गत। फिर उनको धारण किया था, फिर वर्षा हुई, फिर उनको धारण किया गया। और जैसे महाराज जी समझा रहे थे, कितनी सुंदर बात है ये, क्यों इतना कष्ट गोवर्धन सहन सके, सह सके, क्योंकि भगवान के उंगली का जितना भी हिस्सा उनके संपर्क में था वो उसका रहस्य था। इस संपर्क से उनको अपने सारे कष्टों को सहन करने की और साथ साथ आनंदित होने की शक्ति प्राप्त उनको उस संपर्क से हो रही थी। हमारे लिए उसमें क्या मैसेज है, ऑलवेज बी कनेक्टेड, हमेशा भगवान के साथ जुड़े रहिए। भगवान के साथ जुदा होना मतलब नरक की ओर जाना, पाप की ओर जाना, पाप के प्रभाव से लिप्त हो जाना, जन्म जन्मांतर तक फंसे रहना, भव सागर में डूबते रहना, ये भगवान से जुदा होने का परिणाम है जो हम सब लोग भोग रहे हैं। हाँ, हमको पता भी नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं, हमारी क्या अवस्था है। हमारी अवस्था बहुत पतित है, अभी तक हम लोग जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होकर भगवान की भक्ति प्राप्त करने के इतने योग्य नहीं हुए हैं। प्रयास कर रहे हैं, साधना मुक्ति कर रहे हैं, लेकिन हमारी योग्यता नहीं, हम फंसे हुए लोग हैं। जय विजय को शाप दिया गया कि आपको पृथ्वी पर जाना पड़ेगा, कुमारों ने शाप दिया तो तुम डर गए हो एकदम, अरे 7 बार जन्म लेना पड़ेगा भक्त बनकर, नहीं चाहिए कुछ, उसका कंसेशन दीजिए। बोले 3 बार राक्षस बनना पड़ेगा, चलेगा हमको, मतलब उनको भौतिक दुनिया में आने को कितनी कष्ट है, उनको सोचने से भी डर लगता है उनको। और हम लोग यहाँ आराम से जी रहे हैं और यहाँ और सुविधा और बनाने का प्रयास करने के, और कैसा आराम पैदा किया जाए, जो कुछ है ही नहीं यहाँ पर, लेकिन सोच रहे हैं कि मिलेगा मिलेगा, और थोड़ा कष्ट करेगा और आराम मिलेगा, आगे जाकर थोड़ा समय अच्छा आएगा, ऐसे सोचते रहते हैं। लेकिन भौतिक दुनिया में रहना बहुत कष्टमय है, बहुत पीड़ाजनक है। तो इस प्रकार से हमको समझना चाहिए कि हम जो भी कार्य करते हैं हमको भगवान को प्रसन्न करने के लिए करना चाहिए। इस भावना से हमको कल परिक्रमा देनी है। और एक बात ध्यान रखना है कि गोवर्धन की महिमा ऐसी है कि गोवर्धन जो पूरा पर्वत है वो वंदनीय है, और उसके एक एक पत्थर भी वंदनीय है, एक एक शिला भी वंदनीय है, छोटी सी हो, बड़ी सी हो, कितनी सी भी हो। संत लोग घर में जाकर उसकी पूजा करते हैं, भगवान के रूप में सेवा करते हैं, विग्रह के रूप में सेवा करते हैं, उनको आंखें बनाते हैं, आंख नाक लगाते हैं, मुंह बनाते हैं, माला पहनते हैं, मुरली देते हैं, मोरपंख धारण कराते हैं, भोग लगाते हैं, आरती पूजा करते हैं, सब कुछ करते हैं। हमको भी कभी उसका मोह हो सकता है कि हमको भी घर में गोवर्धन चला चाहिए, लेकिन सावधान, सबके लिए चेतावनी है कि गोवर्धन की शिला अगर आपको चाहिए तो किसी संत या ब्रजवासी के तरफ से आपको स्वेच्छा से वो मिलनी चाहिए। आप उसको प्रॉम्प्ट नहीं करेंगे, प्रभु जी आपके हाथ से दे दो ना हमको, ऐसा नहीं, उनको स्फूर्ति होनी चाहिए हृदय के अंदर से कि इस व्यक्ति को गिरिराज शिला देनी चाहिए, तो ही आप उसको वहाँ से ले सकते हैं। और अगर लेते हैं बिना किसी को पूछे तो आपको उस पत्थर के वजन का सोना वहाँ पर रखना है, नहीं तो आप ले नहीं सकते हैं। शास्त्र वर्णन है वरा पुराण में कि अगर कोई व्यक्ति बिना किसी ब्रजवासी के हाथ से या बिना गुरु आदेश से, और एक उस पर कंडीशन है, अगर आपके गुरु आपको देते हैं तो अलग बात है, बिना गुरु के आदेश से बिना ब्रजवासी के हाथ से स्वेच्छा से कोई अगर उठाएगा और स्वर्ण भी वहां नहीं रखेगा तो रौरव नरक जो है आपका इंतजार कर रहा है, ध्यान रखना, आपकी जगह वहां प्रमुख हो जाएगी बहुत समय के लिए, आनंद देने के लिए। रौरव रौरव नरक जो है वो जो वर्णन किए ना, अतल सुतल वितल पाताल लोक जो है रसातल, 6 नरक लोगों का वर्णन है, लेकिन असली नरक जो है वो उसके बाद में आते हैं, वो 27 है, उसके अंदर एक रौरव है, उसके अंदर कुंभीपाक भी है, अलग अलग प्रकार की बहुत अच्छी अच्छी एक्टिविटीज वहाँ पे होती हैं। तो यहाँ पर सोचते हैं कि मजा करेंगे वहां जाके उनके लिए व्यवस्था बना के रखी है कि आप वहां जाएंगे। जो पॉलिटिशियन लोग हैं उनके लिए कुंभीपाक एक स्पेशल बना के रखा है, जिसमें होता है ना गन्ना जो होता है ना वो जाता है ना मशीन के अंदर, पूरा रस निकलता है उसका, फिर क्या करता है वो ऐसा पूरा उसको मोड़ देता है, फिर उसमें घुसाता है उसको, फिर और चार बार मोड़ता है, फिर घुसाता है, आखिरी दम तक उसका जो एक एक बूंद निकाल के चूस लेता है उसको पूरा। वैसे कुछ तो भी वहां पर कुंभीपाक में इंतजाम है, सारे पॉलिटिशियन लोगों को रस निकाल लेते हैं पूरा उनका, और रस निकालते रहते हैं, उनके रस बनते रहते हैं, रस निकालते रहते हैं, सब तड़पते रहते हैं उधर। तो गिरिराज के अंदर ये जो अगर अपराध करेंगे हम लोग, तुमको ध्यान रखना चाहिए कि हमारे लिए रौरव में जाना पड़ेगा कष्ट भोगने के लिए, और किसी भी शिला पर हमको कदम रखना नहीं है, क्योंकि हर शिला भगवान का स्वरूप है, कृष्ण बलराम स्वरूप है, राधा कृष्ण स्वरूप है, स्वयं विष्णु का स्वरूप है, और वो भगवान के परम हरिदास वर्य वैष्णव भी हैं। हर भावना से हमको उनके बाजू से परिक्रमा देनी है अच्छे भाव से, और अनंत लीला की सलिया वहां पर है, उसका एक रात में हजारों रात में वर्णन नहीं कर सकते, इतनी लीलाएं वहां पर हुई है, और कितनी प्रकट है, कितनी किताबों में है, कितनी नहीं है, क्या पता। अनंत लीलाएं, वो तो नित्य लीला धाम है भगवान का, जहां पर भगवान नित्य रूप में वहां पर लीला करते रहते हैं, हमारे आंखों के सामने प्रकट नहीं होता है, क्योंकि हम लोग अभी तक त्रिगुणों में बद्ध हैं, माया में बद्ध हैं, हमारे अंदर क्रोध है, षड विकार से हम त्रस्त हैं, इसलिए हमको कीचड़, गधा, भैंसा और गोबर और कचरा सब दिखाई पड़ता है। लेकिन जब हम शुद्ध हो जाएंगे, हमारी हाँ मति और हमारी जो चेतना है वो शुद्ध हो जाएगी, तो माया का पर्दा हमारे लिए हट जाएगा, और साक्षात जो धाम है भगवान को उसका दर्शन होगा, और वो जो धाम है वो गौलोक का एक अंश है, उसके आगे जाके नित्य लीला है, जो गौलोक धाम में नित्य चलती रहती है यहाँ पर भी चलती रहती है। तो ये सब जो है हृदय की यात्रा, जो हमारी चेतना की जो यात्रा है, जब वो शुद्धि की ओर जाती है, बढ़ती है, तो ये धीरे धीरे धाम हमारे लिए प्रकट होता है। और ये सबके लिए एक विशेष बात सबको ध्यान रखना है कि आप भी लोग भी धाम में बैठे हुए हैं, सब लोग अभी धाम में सेवा कर रहे हैं, धाम की सेवा कर रहे हैं, धामवासियों की सेवा कर रहे हैं, जहां पर भी सच्चे हृदय से निरपेक्ष भाव से सेवा होती है और साथ साथ निरपेक्ष भजन होता है भगवान का, किसी भी हेतु से नहीं, अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम, किसी भी कर्मफल के हेतु, किसी भी पद के हेतु, किसी भी लाभ के हेतु, सिद्धि के हेतु, कोई ऐसा कोई भाव नहीं है, जो अन्याभिलाषा से शून्य होकर सेवा करते हैं और साथ में निरपेक्ष भजन करते हैं भगवान का, भगवान के नाम का भजन, भगवान के नियमों का पालन, शास्त्र का अध्ययन, भक्तों की सेवा, वैष्णव सेवा जो करते हैं, वो जगह पर जहां पर आप धाम में हैं, वो धाम अपनी लीलाओं को, गौरवों को प्रकट करता है। इसलिए अगर आप बरसाना में बैठे हैं, आपको इस धाम से कोई रिस्पॉन्स चाहिए, तो आपको यहाँ पर निरपेक्ष भजन और निरपेक्ष सेवा करनी होगी। और धाम में भी अगर कोई आप भी जाकर पाप करता है, कोई नशा करता है, व्यभिचार करता है, जुआ खेलता है, कोई खून खराबा करता है, कोई आतंक करता है, तो धाम जो है जैसे कछुआ अपने पैर अपने कवच के अंदर छीन लेता है ना, ऐसे अंदर मोड़ लेता है, उसको खींच लेता है, जैसे धाम भी अपनी लीलाओं को, अपनी महात्म्य को हमारी नज़रों से प्रकट कर देता है। इन शॉर्ट द धाम कंसील्स इट्स ग्लोरीज, जहाँ पर पाप किया जाता है, इसलिए हमको ये सबसे बचना चाहिए। जिस जगह पर संत लोग बैठ के, जैसे बाण मंदिर में रमेश बाबा जी महाराज बैठे हुए हैं और जो 58 साल से वहाँ पर भजन कर रहे हैं, इसलिए वहाँ पर जाते ही आपको एकदम दिव्य अनुभव होगा, ये भी बरसाना है, वो भी बरसाना है, ये बस स्टैंड है, वो मान मंदिर है, उतना ही पावरफुल जगह है यहाँ पर, यहाँ पर तो बसें चलती हैं और व्यापार होता है और धूल उड़ती है और वाहन चलता है, अलग भाव है यहाँ पर, तो वहाँ पर आपको इतना दिव्य लगता नहीं, लेकिन आप जैसे ही कुंड के पास जाएंगे, जैसे ही किसी संत के कुटी में जाएंगे, आपको एकदम दिव्य अनुभव होगा, क्यों, भजन का प्रभाव है। और हमारे लिए भी अगर आपको निजी रूप में अगर भजन का, आपको इस लीलाओं का, महात्म्य का अनुभव करना है, तो आपको निजी रूप में भजन करना होगा यहाँ पर, अपने मन को किसी भी चीज़ से लिप्त ना होने देकर आपको भजन में लिप्त होना पड़ेगा, अपने मन को क्या कहते हैं उसको, एकाग्र करना पड़ेगा, जितना भी समय आपको मिल रहा है सेवा के पश्चात भजन में रहना पड़ेगा, यहाँ पर आके कीर्तनियों की सहायता करना पड़ेगी, तो आपके लिए धाम अपना गौरव प्रकट करेगा। वो भी कैसे, ये यथा माम प्रपद्यन्ते, जैसे आप अपना भाव प्रकट करेंगे वैसे धाम आपके लिए अपना गौरव, अपनी दिव्यता, अपनी आध्यात्मिकता, अपना पावर जो है, वो जो वाइब्रेशंस है वो आपको उसको प्रकट करेगा, आपको लाभ मिलेगा उसका। इसलिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या है, चित्त को संभालना, यहां पर सबसे बड़ा चैलेंज यही है, अपने मन को और चित्त को एकाग्र रखना, ये सबसे बड़ा चैलेंज है यहां पर। चाहे आप 16 घंटा सेवा करो या 8 घंटा सेवा करो, मन कृष्ण पर अगर आप केंद्रित रखेंगे, सदैव कृष्ण पदा मन पदारंद पदारविंद यो ये न केन प्रकारेण मन कृष्ण निवेशयेत, तब जाकर धाम आपके लिए प्रकट होगा, तब जाकर धाम वास आपका संपन्न हो जाएगा। तो शिलाओं के बारे में आपको बताया, सावधान रहना उसके बारे में। और समय हो चुका है, थोड़े आपको गोवर्धन परिक्रमा के कुछ जो अपराध है जो नहीं करने चाहिए, आपको पता नहीं होगा शायद आपको, तो मेरा बताना फर्ज है आपके लिए। कैसे करना चाहिए, सबसे बड़ा बात यह है हमको जानना चाहिए कि गिरि गोवर्धन की परिक्रमा करते समय किसी भी जीव को, मैं ये नहीं कह रहा हूँ भक्त को, किसी भी जीव को कष्ट नहीं देना है आपको, संभाल के चलना है। कोई कीड़ा मकोड़ा कोई रास्ते में होगा तो देख के चलना है आपको, किसी का हानि या नुकसान नहीं करना है। साथ में जो चल रहे हैं वो आपके जैसे गौरवशाली भक्त हैं जिनको गिरिराज की परिक्रमा करने का भाग्य मिलेगा। हाँ, ब्रजवासी तो महान है ही, जो आज पास में आपको ब्रजवासी दिखेंगे उनका किसी भी तरह से अपराध नहीं होना चाहिए आपको। शायद वो कुछ बोल सकते हैं, कुछ बुरा भला, आपको ध्यान नहीं देना है उसके ऊपर, वो अपराध स्वीकार भी नहीं करना है उनका, ना उनका अपराध करना है रिस्पॉन्स के अंदर। जितने महान ब्रजवासी हैं उतने भी लोग जो परिक्रमा देने वाले हैं वो भी उतने ही महान हैं, क्योंकि राधा रानी की कृपा से उनको परिक्रमा करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। जैसे इतने हम भाग्यशाली हैं उतने हमारे साथ में करने वाले लोग भी भाग्यशाली हैं, उनका भी किसी भी रूप में अपराध नहीं करना चाहिए। ऐसा कोई कार्य करना नहीं है जिससे किसी व्यक्ति को उद्वेग हो मन में, बुरा लगे उसको हृदय में, ऐसा कार्य नहीं करना है। सबको आगे करते हुए, सबको सहायता करते हुए हमको चलना है, सबके सेवक के रूप में चलना है, और साथ साथ में अपनी चेतना को एकाग्र रखने के लिए सतत भगवान के नाम का जप करते हुए चलना है। गोवर्धन की परिक्रमा करते हुए कभी भी बिना मतलब की बातें नहीं करनी चाहिए। कॉन्स्टेंटली चैंट द होली नेम, भगवान के नाम का सतत कीर्तन करते रहिए या जप करते रहिए। और कोई अगर जरूरत नहीं है उसको बिना बोले रह सकते हैं आप, तो उसको नहीं बोलना चाहिए। इफ नेसेसरी देन स्पीक, नहीं तो मुंह में भगवान के नाम का अलंकार लेकर चलिए, उतनी यात्री आप गोवर्धन परिक्रमा अधिक आपको आध्यात्मिक लाभ देगी। तो किसी भी चर अचर जीव निर्जीव वस्तु का अपराध नहीं करना चाहिए, और अगर ऐसा होता है तो उस भक्त के जीवन में डिजास्टर यानी कि संकट आ सकता है। गोवर्धन की परिक्रमा करते समय साफ धुले हुए वस्त्र पहनना चाहिए, पहने हुए वस्त्र नहीं पहनना चाहिए, खास करके जिसमें हम सोए हैं रात को उस वस्त्र को बिल्कुल नहीं पहनना चाहिए। शुचिर्भूत होकर स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहनकर निकलना है, और किसी प्रकार के चमड़े के वस्त्र को नहीं लेके जाना चाहिए, और नंगे पैर परिक्रमा करनी चाहिए। हाँ, इस तरह से आपको लगेगा कि कष्ट में बातें हैं सब ये, लेकिन ये एक बार की तपस्या है, ज़्यादा बड़ी तपस्या नहीं है। सब जगह हम बूट पहन के चलते हैं, लेकिन गोवर्धन में आप बिना चप्पल के चलेंगे। अगर आपको पैर में कुछ तकलीफ है तो आप उसको मोजा पहन सकते हैं या तो उसको कोई पट्टी लगा सकते हैं, लेकिन जूता पहन के नहीं चलना है आपको। और साथ साथ में गोवर्धन की परिक्रमा करते समय तन से और मन से और चेतना से ब्रह्मचर्य का पालन करना है। इसका मतलब गोवर्धन के पास में चलते समय किसी पराई स्त्री को या पराए मर्द को देखकर उस भावना से दिखना नहीं चाहिए, उसकी सुंदरता को, शरीर के कमनीयता को या उसके शरीर के आकर्षक रूपों को नहीं देखना चाहिए। मन में विचार भी लाना चाहिए, मन से और चेतना से ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए गोवर्धन की परिक्रमा करते समय। मतलब मन जो है केवल गोवर्धन और भगवान कृष्ण के चरणों में होना चाहिए। रात को परिक्रमा नहीं देनी चाहिए, हम तो दिन में कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। और बिना मुंह धोए बिना स्नान किए परिक्रमा नहीं करनी चाहिए, आप तो सब लोग सब कुछ करके निकलेंगे प्रातः विधि को, बहुत अच्छी बात है। और अगर कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है परिक्रमा करते समय, समझो कोई किसी को दस्त लग गए, किसी को बुखार आ गया और नहीं कर पा रहे, तो ऐसे कहा गया कि आपको वही रहना चाहिए जहाँ पर आपका परिक्रमा खंडित हो गया है, और ठीक होने पर वहीं से आगे परिक्रमा पूरा करके गोवर्धन को छोड़ के जाना चाहिए। आप गोवर्धन मतलब ब्रज में जा सकते हैं कहीं और, लेकिन ब्रज के बाहर नहीं जाना चाहिए। मैं आपको सबके लिए प्रार्थना करता हूं कि आप में से कोई बीमार ना पड़े, सबके लिए प्रार्थना करता हूं कि आपकी सबकी स्वस्थ स्थिति में मन की और तन की परिक्रमा पूर्ण हो, ये आपको मैं शुभकामना देता हूं, भगवान से प्रार्थना करता हूं। और स्त्रियों को उनके मासिक धर्म के समय गोवर्धन की परिक्रमा नहीं करनी चाहिए, और ऐसा समझ के नहीं करना चाहिए कि कितना कष्टमय है, अभी कितना चलना पड़ेगा, अभी पांव दुख रहे हैं, ऐसे अपने आप को क्या कहते हैं जोर देके नहीं करना चाहिए। बड़े उत्साह से, बड़ी भावना से, भक्ति भाव से भक्तों के साथ में रहकर करना चाहिए। इसके लिए एक थोड़ा सा रहस्य ऐसा है कि अगर भक्तों के साथ में रहेंगे तो आपका उत्साह बना रहेगा, आप पीछे 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 रहेंगे तो जितना आप भक्तों के साथ में रहेंगे उतना आपको एनर्जी मिलता रहेगा भक्तों से, उत्साह का ना, कीर्तन में कीर्तन के आसपास रहेंगे वहां उतना आपको एक शक्ति मिलती रहेगी, उत्साह मिलता रहेगा। और आपको हमारा ऐसा अनुभव है कि आप कीर्तन के बीच में चलते रहेंगे आपको लगेगा भी नहीं कि आपने गोवर्धन परिक्रमा किया है, कैसे 22 किलोमीटर आप चलेंगे आपको एंड तक नाचते रहेंगे, हमने देखा है कई भक्त नाचते हुए परिक्रमा करते हैं 22 किलोमीटर की डांसिंग ऑल द टाइम, क्योंकि वो हरिनाम संकीर्तन के बल के प्रभाव में रहते हैं। इसलिए बी टुगेदर, डोंट लिंगर बिहाइंड, जैसे पीछे हटेंगे आपका उत्साह जो है, जैसे आग की चिंगारी कहां सबसे पावरफुल रहती है, जब तक वो आग में रहती है वो चिंगारी बनी रहती है, जैसे आग के बाहर है तो जैसे एक पैराबोलिक डिस्टेंस क्रॉस करती है वो चिंगारी बुझ जाती है, क्योंकि आग की चिंगारी का, आग का स्रोत कहां से है, आग के बीच में से। जब तक आप आग के बीच में रहोगे चिंगारी का जो प्रभाव है बना रहेगा, हम सब लोग चिंगारी की तरह है, आग से बाहर जाएंगे तो खत्म हो जाएंगे, बिल्कुल शक्ति पूरी खत्म। इसलिए आप लोगों को विनती है सब साथ में रहिए और एक दूसरे का हौसला बढ़ाइए, किसी का उत्साह अगर खत्म हो जाता है मतलब थोड़ा ही अंतर है, चलो आगे कोई बात नहीं, ऐसा मौका बार बार नहीं आएगा। ब्रजवासी ऐसे लोग हैं आपको पता नहीं है, रोज परिक्रमा करते हैं बचपन से लेकर बुढ़ापे तक, मैं देख आप देखेंगे आप जब परिक्रमा करेंगे अगर आप देखेंगे कुछ कुछ लोग ऐसे फास्ट 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 चलते जाएंगे आपके सामने से, एकदम बड़े बूढ़े उम्र के आप देखते रह जाएंगे उनको, अरे क्या चल रहे हैं एकदम चल के, 4 घंटा में पूरा कर देते हैं, 4 घंटा में, आपका समय हमने 8 घंटा दिया है, डोंट वरी, यही सोच के किया है कि आपका परिक्रमा सफल हो। हाँ, कोई भी जब पहली बार कर रहे हैं, कोई आई कैम्प में भी हम लोग पहली बार करने जा रहे हैं, उसमें से कई लोग होंगे जो पहली बार करने वाले हैं, उनको पता ही नहीं गोवर्धन परिक्रमा क्या होती है, उन सबके लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि सबका भाव बना रहे और उनकी परिक्रमा सफल हो। एक बार आपकी परिक्रमा सफल होती है आपके अंदर इतना उत्साह आएगा आप बार बार करने के लिए प्लान करोगे उसके। तो हमारी इच्छा ऐसे कि आपको एक बार करने के बाद में ये मन में विचार आना चाहिए कि ये अगली बार कब करूँगा, मतलब आपकी कह सकते हैं कि आपकी यात्रा थोड़ी सफल हो गई, अगर कहे कभी दोबारा नहीं करेंगे मतलब आपका फेल हो गया पूरा ऐसा लगेगा, मतलब क्या हुआ आपका भाव सही नहीं था, अगर आप त्रस्त हो गए इसे परेशान हो गए मतलब आपकी शुरुआत से ही भावना सही नहीं थी। तो ये सब भावना का खेल है, मन चंगा तो कठौती में गंगा, मन सही होना चाहिए, मन स्वस्थ होगा तो सब कुछ सही रहता है। मन का उस मैंने कल बताया ना, जैसे ही प्रसिद्ध जी की आज्ञा हुई नवलचंद्र गोस्वामी कैसे भागे उनको लेके, हाँ उनको भी आश्चर्य होता, अरे मैं कैसे भाग रहा हूँ, हवा में से उड़ने से जा रहा हूँ मैं, क्योंकि इच्छा थी भगवान की सेवा करने की, राधा रानी की सेवा करने की, भगवान शक्ति देते उसको, आपको भी देंगे। आप बलराम जी से प्रार्थना कीजिए, राधा रानी से प्रार्थना कीजिए, कृष्ण से प्रार्थना कीजिए, ब्रजभूमि से प्रार्थना कीजिए, भक्तों से प्रार्थना कीजिए कि मेरी कल की परिक्रमा जो है बड़े उत्साह से और भक्ति भाव से संपन्न हो, शुरुआत से लेकर एंड तक प्रार्थना करना आरंभ कर दीजिए, सुबह उठ के भी फिर प्रार्थना कीजिए, जब करते प्रार्थना कीजिए, ऐसा नहीं कि लास्ट टाइम हमने अच्छे करके आराम से करेंगे, नहीं आपका फिर परीक्षा होगी। हाँ, हर समय करते वक्त आपको नम्रता से हामी तो कंगाला कृष्ण कृष्ण बोली ताए धाए तो पाछे पाछे, कि मैं कंगाल हूँ मेरे अंदर कोई शक्ति नहीं है, अगर कुछ कर सकता हूँ तो आपके बल से करता हूँ, हे भगवान मुझे बल देना ताकि मैं आपकी चरण सेवा कर सकूँ ठीक से। इस भावना से आपको सबको करना है, मेरे जो सब मैंने नियम पूरे कर दिए इसमें से, और बीच में हम लोग कुछ कुछ जगह पर रुकेंगे तो आपको विश्राम भी मिलेगा और कथा भी सुनेंगे तो महात्म्य भी सुनेंगे तो उत्साह बढ़ेगा आपका। रुकने से दो काम होते हैं, एक तो विश्राम होता है और एक नुकसान भी होता है, आगे चलने का उत्साह कम हो जाता है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि हम केवल कुछ के समय के लिए महिमा सुनने के लिए वहाँ बैठेंगे और फिर जैसे ही बोलेंगे तुरंत आपको उठ के आगे चलना है, और एक बीच में एक बड़ा टेस्ट आएगा आपका प्रसादम ब्रेक। बुधवार से लोग कहते हैं कि प्रसाद के बाद में सबकी गाड़ी ढीले हो जाती है एकदम ये सब जो आगे आने वाले व्यवधान है उसको पहले अवगत होकर हमको चलना चाहिए। इसलिए प्रसाद इतना पाइए आप, बढ़िया सा गोवर्धन आश्रम में महाप्रसाद का गिरिराज का व्यवस्था किया है, इतना प्रसाद पाइए जितना आपको चलने के लिए पर्याप्त है। ऐसे नहीं कि आप इतना पाएंगे कि वहाँ सो ही जाएंगे, उठेंगे नहीं आगे, तो आपको रात अगले दिन जाके परिक्रमा पूरी करनी पड़ेगी। हाँ, तो अगले दिन दर्शन चुक चुक जाएंगे आपके। हाँ, ऐसा नहीं करना है आपको, जितना अनुकूल है आनंद से पाइए, प्रेम से पाइए, फ्रेश हो जाइए, चलिए फिर उत्साह से एकदम जोरदार और परिक्रमा पूरी करके आनंद से हम कीर्तन करते हुए लौट के आएंगे। ठीक है, मैं दोबारा गिरिराज गोवर्धन से, राधा रानी से, कृष्ण भगवान से, बलराम जी से प्रार्थना करूंगा कि आपके सबकी गिरिराज की परिक्रमा जो है वो सफल हो जाए, आपके बाजुओं में, आपके पैरों में, आपके उंगलियों में इतनी शक्ति प्राप्त हो कल कि आपको ये आनंद आनंद ही में आपका परिक्रमा बिना कष्ट के पूर्ण हो जाए। हरे कृष्णा, श्री गिरिराज गोवर्धन की जय हो। हरे कृष्णा, बहुत धन्यवाद।